भाग 12 प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता। आधुनिक काल में स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक देशों की प्रणाली का आधार प्रतिनिधित्व है। प्राचीन काल में राज्य छोटे छोटे होते थे और अधिकांश राज्य का स्वरूप राजतंत्रीय था, अतः इन राज्यों के शासन संचालन में जनता का कोई विशेष हाथ नहीं रहता था। प्राय राजा और उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी शासन का संचालन करते थे। ग्रीस या वैशाली जैसे छोटे छोटे प्रजातांत्रिक राज्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती थी, लेकिन आधुनिक युग में अधिकांश राज्यों का स्वरूप प्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र जनता द्वारा शासन है। विशुद्ध प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है। प्रजातंत्र छोटे मोटे राज्यों में ही संभव है। आधुनिक राज्य प्राय क्षेत्र तथा जनसंख्या में काफी बड़े होते हैं। इसकी विशालता के कारण राज्य के प्रत्येक नागरिक का प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेना असंभव हो जाता है। इसलिए प्रतिनिधायत्मक प्रजातंत्र प्रणाली का आविष्कार हुआ। इस तरह के राज्य में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि का संचालन करते हैं। अतः प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को मुख्यतः निर्वाचन का अधिकार कहते हैं। यह नागरिकों का प्रमुख अधिकार हो गया है। तात्पर्य यह है कि निर्वाचन व्यवस्था की कल्पना मुख्यतः आधुनिक है। विशाल आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों के कारण इसका जन्म हुआ। आधुनिक युग में निर्वाचन एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया हो गई है। हर प्रतिनिधायत्मक सरकार में निर्वाचकों तथा निर्वाचन क्षेत्रों का संगठन और निर्वाचन की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। इन्हें आधुनिक प्रजातांत्रिक पद्धति का आधार कहना उचित नहीं होगा। अतः इस अध्याय के अंतर्गत हम इन निर्वाचन संबंधी सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। प्रतिनिधिक प्रणाली। प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास। मॉन्टरेक्यू के अनुसार विशुद्ध प्रतिनिधि की कल्पना नहीं की थी। राजा ही कानून बनाता था। यदि कभी समूह एकत्र होता भी था तो वह जनता का होता था, उसके प्रतिनिधियों का नहीं। रूसो का भी कहना है कि प्रतिनिधित्व की कल्पना आधुनिक है। इसकी उत्पत्ति का कारण सरकारों की स्वेच्छाचारिता थी। फिर भी कहा जा सकता है कि प्राचीन प्रजातांत्रिक राज्यों में इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मध्यकालीन युग में वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। जब कुछ राजाओं को धन की आवश्यकता होती थी तो करारोपण के संबंध में मतगणना लेने के लिए कुछ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते थे। प्रतिनिधियों के समूह ने धीरे धीरे प्रतिनिधि संस्था का रूप ग्रहण कर, जिसे इंग्लैंड में संसद, फ्रांस में स्टेट जर्नल तथा जापान में डायट कहा जाने लगा। इन संस्थाओं तथा राजाओं के बीच सदियों तक संघर्ष चलता रहा। राजाओं की शक्ति क्षीण होने लगी तथा प्रतिनिधि संस्थाओं की शक्ति बढ़ने लगी। 1213 में जॉन ने प्रत्येक काउंटी से 4 बुद्धिमान नाइटों को वृहद सभा की बैठक में बुलाया। हेनरी तृतीय ने भी 1254 ईस्वी में इस प्रकार की सभा बुलाई। 1256 ईस्वी में बैरेनों ने विजयी नेता साइमन डी मॉन्टफोर्ड ने संसद की बैठक बुलाई, जिसमें सामंतों, पादरियों और काउंटियों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 21 नगरों से भी 2 प्रतिनिधि आमंत्रित हुए। पहली बार संसद की प्रतिनिधायत्मक प्रकृति के इतना व्यापक और क्रांतिकारी रूप दिया गया। 1295 में एडवर्ड प्रथम ने संसद की बैठक बुलाई। यह इतिहास में आदर्श संसद के नाम से विख्यात है, क्योंकि 400 व्यक्तियों की इस सभा में प्राय सभी प्रमुख वर्गों, बैरन, पादरी, नाइट, नगर आदि की प्रतिनिधित्व मिला। इसके पश्चात ब्रिटिश व्यवस्था का वह एक स्थायी और अनिवार्य अंग बन गई। तत्पश्चात ट्यूडर और स्टुअर्ट काल में संवैधानिक तथा राजनीतिक क्रांतियां चलती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप संसद अधिक शक्तिशाली तथा प्रतिनिधात्मक बनती गई। 18वीं शताब्दी में सम्राट एवं संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया और संसद पूर्ण सार्वभौम हो गई। 19वीं तथा वर्तमान शताब्दी में यह विकास पूर्ण हो गया। इंग्लैंड में शुरू से ही संसद का रूप अंततः प्रतिनिधात्मक रहा, क्योंकि नगरों और सामंतों के प्रतिनिधि किसी न किसी रूप में चुने जाते थे। इंग्लैंड के लिए प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं था। संसद से पूर्व स्थानीय संस्थाओं में इसका प्रयोग होने लगा था। संसद के संबंध में इसका उदय मध्य युग में हुआ। यह कहना गलत होगा कि प्रतिनिधित्व पद्धति का उदय जर्मनी के जंगलों में और विकास सैक्सन युग में इंग्लैंड में हुआ, जिसे बाद में संसदीय संस्थाओं ने अपनाया। मध्ययुगीन संसद की सदस्यता अधिकार की अपेक्षा कठिन और दुखदायी थी। कैद और हत्या का भय बना रहता था। सदस्यता किसी के सिर पर जबरदस्ती मढ़ी जाती थी। अतः सच्ची प्रतिनिधात्मक सरकार की स्थापना वर्तमान काल में हुई, लेकिन इसकी नींव वृहत सभा में काउंटी और बोरो को प्रतिनिधित्व देने के साथ पड़ चुकी थी। इसके उदय का कारण स्वतंत्रता या स्वशासन के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि राजाओं की कर प्राप्त करने की शक्ति का विरोध था। इंग्लैंड की भांति अन्य देशों में भी प्रतिनिधित्व संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें हस्तांतरित करने के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। फ्रांस की महान क्रांति ने प्रतिनिधात्मक प्रणाली की स्थापना की दिशा में एक महान संघर्ष किया। अमेरिकी उपनिवेशों ने बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा लगाया तथा अंत में लोकतंत्र प्रतिनिधात्मक सरकार की स्थापना में सफल हुए। विश्व के अन्य देशों में भी प्रतिनिधित्व संस्थाओं की स्थापना के लिए आंदोलन हुए। इसका परिणाम यह निकला कि लोकतंत्रीय तथा अधिनायकवादी देशों के समान रूप से प्रतिनिधात्मक प्रणाली अपनाई जा रही है। भारत में प्रतिनिधात्मक प्रणाली के विकास की कहानी ब्रिटिश शासन की स्थापना से आरंभ होती है। यद्यपि प्राचीन तथा मुगलकालीन भारत में दरबार की प्रथा के अंतर्गत जागीरदारों तथा सामंतों को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व का स्थान नहीं था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारतीयों के सहयोग के बिना शासन चलाना असंभव है। अतः भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया। पुनः 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई तथा परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड सुधार 1919 इस दिशा में एक प्रमुख कदम था। इसका लक्ष्य क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना थी। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई तथा उन्हें शासन को नियंत्रित करने की भी शक्ति बढ़ा दी गई। शासन को हस्तांतरित भाग को प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया गया। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि सांप्रदायिक तथा वर्गीय हितों के प्रतिनिधियों पर अधिक बल दिया गया। 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम ने प्रतिनिधित्व संस्थाओं की जड़ को पूरा मजबूत कर दिया। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई। प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडलीय सरकारों की स्थापना हुई। यह पहला मौका था जबकि भारत में वृहत रूप से चुनाव हुआ और सबसे बड़ा दल कांग्रेस इसमें सक्रिय भाग लिया। अंत में स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का संगठन हुआ। इसके प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था, फिर भी इस सभा में सभी वर्गों, जातियों, राजनीतिक दलों तथा हितों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचन की विशेषता थी कि वे सीमित थे। प्रतिनिधियों के चुनाव का आधार व्यस्क मताधिकार नहीं था, चुनाव का आधार सांप्रदायिकता तथा वर्गीय प्रतिनिधित्व था। लेकिन स्वतंत्र भारत में निर्वाचन को पूर्ण प्रजातांत्रिक बना दिया गया, जिसका आधार असीमित व्यस्क मताधिकार है। प्रतिनिधियों को विशेष स्थान तथा अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रमुखतः विधि निर्माण एवं कपितय अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति की विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व के संबंध में दो प्रतिकूल सिद्धांतों का प्रतिपादन हो गया है, आदेश प्रतिनिधित्व तथा आदेशहीन प्रतिनिधित्व। आदेश प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन है, उसकी निजी इच्छा कुछ नहीं, वह निर्वाचकों की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। यह किसी प्रकार का संशोधन निर्वाचकों की आज्ञा से ले सकता है। प्रतिनिधित्व का यह रूप आज सबसे पुराना पड़ गया है, फिर भी कुछ ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो मालिक के इच्छा के अंतर्गत ही कुछ कर सकते हैं, जैसे विदेशों में राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि। प्रतिनिधित्व के इस सिद्धांत को अमान्य ठहराया गया है, क्योंकि प्रतिनिधियों को ना तो विवेकपूर्ण आदेश ही उपलब्ध होते हैं और ना तो निर्वाचकों की वास्तविक इच्छा का पता ही आसानी से लगाना संभव है। इसके अलावा विधि निर्माण के कार्य आज इतने पेचीदे, कठिन तथा विधृत हो गए हैं कि कोई प्रतिनिधि हर कदम पर निर्वाचकों द्वारा निर्देशित नहीं हो सकता। द्रुत गति से परिवर्तित होने वाली घटनाओं तथा समस्याओं के कारण प्रतिज्ञाओं का अटल रहना किसी प्रतिनिधि के लिए संभव नहीं। इसके अलावा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं दिखाई पड़ता। आधुनिक युग में चुनाव का आधार दलीय पद्धति है। मतदाता किसी प्रतिनिधि विशेष को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देते हैं। दल अपनी नीतियों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। विजयी दल अपनी नीतियों को कार्यान्वित करवाता है, ना कि मतदाताओं की नीतियों को। मतदाताओं की कोई एक नीति हो भी नहीं सकती, फिर भी प्रतिनिधि गण दलीय संगठन के अंतर्गत चुनाव लड़ते हैं और दलीय नीतियों को लागू करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह किसी भी प्रतिनिधि की शक्ति के बाहर की बात है कि वह किसी दल की नीति को व्यक्तिगत रूप से लागू करे। अतः यह व्यवहारिक नहीं दिखाई पड़ता कि कोई प्रतिनिधि निर्वाचकों के आदेश के अंतर्गत ही अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखे। अंत में कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस स्थिति में प्रतिनिधि होना चाहेगा जब केवल निर्वाचकों के आदेश अनुसार उसे चलना पड़े। आदेश प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लास्की ने गलत तथा लीवर ने न्याय विरुद्ध असंगत और असंवैधानिक कहा है। आदेशहीन प्रतिनिधित्व। आदेशहीन प्रतिनिधित्व का अर्थ है प्रतिनिधिगण निर्वाचकों के अभिकर्ता नहीं हैं, वे निर्वाचकों के अधीन नहीं हैं तथा केवल उनके आदेश के अनुसार कार्य नहीं करते। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से यह संभव नहीं कि कोई प्रतिनिधि सदा निर्वाचकों के आदेश के अनुसार या निर्वाचकों के समक्ष की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार कार्य करे। अतः आधुनिक युग में आदेश प्रतिनिधित्व का अमान्य सिद्धांत सिद्ध हो गया और आदेशहीन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता दी गई। निष्कर्ष: प्रतिनिधित्व के उपयुक्त सिद्धांत निर्वाचक तथा प्रतिनिधि के संबंध को निर्धारित करते हैं। आज यह सर्वमान्य है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों का केवल अभिकर्ता नहीं है बल्कि उनके हित के लिए स्वेच्छित नीतियों का निर्धारक भी है। बर्क ने निर्वाचकों तथा प्रतिनिधियों के पारंपरिक संबंध की परिभाषा इन शब्दों में दी है: संसद भिन्न और विरोधी स्वार्थों के राजपूतों का सम्मेलन नहीं कि जिन स्वार्थों को हर कोई अभिकर्ता और समर्थक होने के नाते अन्य अभिकर्ताओं और समर्थक के विरुद्ध और स्थिर रहेगा, किंतु संसद एक राष्ट्र के विचार विमर्श की सभा है। इसका समग्र रूप में एक स्वार्थ है और जहां स्थानीय उद्देश्यों तथा स्थानीय पक्षपातों से पथ निर्देशन नहीं होना चाहिए। प्रत्युत संपूर्ण सामान्य तर्क के फलस्वरूप सर्वमान्य हित होना चाहिए। निसंदेह आप सदस्य को चुनते हैं, किंतु जब आप उसे चुन लेते हैं तो वह ब्रिस्टल का सदस्य नहीं होता बल्कि वह संसद का सदस्य होता है। इस सिद्धांत का समर्थन ब्रिटिश संसद में निहित सार्वभौम शक्ति का होता है। अवधि पर्यंत संसद किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती। भारत में संसद को विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, भले ही इसके लिए संसद सदस्यों की आगामी आम चुनाव में निर्वाचकों के समक्ष जवाब देना पड़े। पदावधि: प्रतिनिधियों के कार्यावधि के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। विभिन्न देशों में विभिन्न विधियां अपनाई गई हैं। जहां व्यवस्थापिका सभाओं में लोकप्रिय सदनों के सदस्यों का प्रश्न है, उनका कार्यकाल भारत, ब्रिटेन तथा कनाडा में 5 वर्ष और सोवियत संघ, स्वीडन तथा जापान में 4 वर्ष है। द्वितीय सदनों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में 6 वर्ष, दक्षिण अफ्रीका में 10 वर्ष, फ्रांस में 9 वर्ष तथा सोवियत रूस में 4 वर्ष तथा ब्रिटेन में आजीवन है। विभिन्न कार्यावधियों के औचित्य के पक्ष में कोई ठोस तर्क देना कठिन है। भारतीय संविधान सभा की संघीय संविधान समिति ने लोकसभा के लिए 4 वर्ष का कार्यकाल निश्चित किया था, लेकिन पारूप समिति ने इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। इसका कारण यह बतलाया गया कि संसदीय प्रणाली में प्रथम वर्ष किसी मंत्री को शासन कार्य का ज्ञान प्राप्त करने में लग जाता है तथा अंतिम वर्ष सामान्य निर्वाचन की तैयारी में लग जाता है। फलतः केवल 2 वर्ष का समय बचेगा जो सुनियोजित प्रशासन के लिए अत्यंत अल्प अवधि है। डॉक्टर केवी राव के शब्दों में पारू समिति द्वारा दी गई व्याख्या उतनी ही असंतोषजनक है जितनी की अनावश्यक। 4 और 5 वर्ष में कोई विशेष अंतर नहीं, लेकिन समिति द्वारा उपयुक्त व्याख्या करना कतई ठीक नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिधियों की अवधि को निश्चित करने के लिए युक्तिसंगत सिद्धांत की व्याख्या की है। एक और तो सदस्य के पद की अवधि इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि उसे अपना उत्तरदायित्व भी भुला दे या जो अपने कर्तव्यों को बहुत नरमी से ग्रहण करे और व्यक्तिगत स्वार्थों की दृष्टि से उसका पालन करे तथा अपने विचारों के साथ उन संपूर्ण मेल मिलापों की अपेक्षा करे जिनके विषय में वह उनसे सहमत हो या भिन्न मत रखता हो। यह प्रतिनिधि सरकार के लोगों में से एक है। दूसरी ओर उसके पद की अवधि ऐसी होनी चाहिए कि उसे केवल एक कार्य द्वारा निरीक्षण योग्य न बनाए प्रत्युत उसके कार्यक्रम के द्वारा निरीक्षण योग्य ठहराए। निष्कर्ष है, प्रतिनिधि की अवधि ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। साथ ही उसके कार्य की अवधि उसके कार्य की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। प्रतिनिधियों की योग्यताएं, प्रतिनिधियों की विशिष्टता, उत्तरदायित्व कार्य करने पड़ते हैं, उन्हें जटिल तथा पेचीदे कानून का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले देश का शासन संचालन स्वच्छ तथा कुशल तरीके से हो और सामान्य हित की वृद्धि हो। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि के योग्य दक्ष कार्यकुशल तथा देश सेवी हो। तात्पर्य यह है कि प्रतिनिधियों का गुणात्मक पक्ष ऊंचा हो। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधियों के लिए कतिपय उच्च योग्यताएं निर्धारित कर देने के पक्ष में थे। भारतीय संविधान में कई प्रमुख सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता के लिए कतिपय विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए। डॉक्टर आर आर दिवाकर का कहना था कि हम लोग ऐसा विधायक चाहते हैं जो केवल एक प्रतिनिधि ना हो बल्कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो विधि निर्माण कर सके तथा दूरदर्शी हो। इस प्रसंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं विधानमंडलों के सदस्यों के लिए कतिपय योग्यता निर्धारित करने के पक्ष में हूँ। यह अजीब सा दिखाई पड़ता है कि कानून के प्रशासकों के लिए हम ऊंची योग्यता निर्धारित करें लेकिन जो इसका निर्माण करते हैं उनके लिए निर्वाचन होने के अतिरिक्त कुछ नहीं। केटी शाह ने भी यह मत व्यक्त किया था कि व्यापक रूप से फैली निरक्षरता के फलस्वरूप विधानमंडलों में अशिक्षित व्यक्तियों को चुने जाने का डर है। अतः विधानमंडल के लिए शिक्षित होना अनिवार्य कर देना चाहिए लेकिन प्रतिनिधियों पर इस प्रकार की किसी तरह की मर्यादा लगाना अप्रजातांत्रिक दिखाई पड़ता है लेकिन कतई पर सामान्य मर्यादाएं लगाई जा सकती हैं। उम्र, नागरिकता, अपराध, मानसिक स्थिति आदि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक समझी जाती हैं। पहला, नागरिक। साधारणतः देश का नागरिक ही प्रतिनिधि हो सकता है। नागरिकों का प्रतिनिधि पद प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना उनका एक प्रमुख राजनीतिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार रहता है कि चाहे वह जन्मजात या पंजीकृत या अंगीकृत नागरिक हो, विदेशी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं क्योंकि संभव है वे पद का दुरुपयोग निजी स्वार्थ या अपनी मातृभूमि के स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। लेकिन देश के नागरिकों से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसके अलावा देश के नागरिक ही देश की हित की बात अच्छी तरह से सोच सकते हैं तथा देश की समस्याओं तथा परिस्थितियों से भली भांति अवगत रहने के कारण अधिक अच्छे कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, आयु। अधिकांश संविधान में प्रतिनिधियों के आयु का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान ने लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष निश्चित की गई है। अमेरिका में भी प्रथम तथा द्वितीय सदस्यों के लिए क्रमशः उपयुक्त न्यूनतम आयु निश्चित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा तो उच्च सदनों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की दी जाती है। आयु को न्यूनतम सीमा को प्राय उच्च रखा जाता है। कारण यह है कि विधि निर्माण के लिए अनुभवी तथा परिपक्व व्यक्तियों की आवश्यकता है। द्वितीय सदनों के सदस्यों की न्यूनतम आयु प्राय अधिक उच्च रखी जाती है, क्योंकि उच्च सदन का अर्थ कार्य विधियों पर अधिक गंभीरता पूर्वक विचार करना तथा उन्हें निम्न सदन के उत्तेजित एवं क्षणिक आवेशों से बचाना है। तीसरा, आवास। कई देशों में प्रतिनिधियों के लिए आवास की मान्यता निश्चित की गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस राज्य से चुनाव में निर्वाचित होता है उस राज्य का निवासी हो, लेकिन क्षेत्रीय नियम के विकास के कारण प्रत्याशी को उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। इसके विपरीत भारत में आवास को अनिवार्य नहीं बनाया गया। सिर्फ एक क्षेत्र का निवासी दूसरे क्षेत्र में नहीं बल्कि एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य से भी खड़ा हो सकता है। फिर भी साधारणतः अस्थानीय व्यक्ति ही किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि पद के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। चौथा, संपत्ति। कई देशों में संपत्ति को प्रतिनिधि की योग्यता माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास निजी संपत्ति होती है उसे कानून निर्माण के लिए पर्याप्त समय मिलता है। साथ ही चुनाव में घूमने फिरने और अपने अपने विचारों को प्रकाशित करने के लिए उसका पर्याप्त साधन रहता है। इसके अलावा उस संपत्ति की रक्षा के लिए वह राज्य का भक्त होता है, बिना पारिश्रमिक के जनता की सेवा कर सकता है। लेकिन संपत्ति की योग्यता का धीरे धीरे लोप हो रहा है। प्रगतिशील प्रजातांत्रिक देशों में यह लगभग समाप्त हो गया है। पद, बहुत से राज्यों में यह बंधन लगा दिया गया है कि कुछ विशेष पदों पर आसीन अधिकारी व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप, भारत में कोई भी व्यक्ति जो सरकारी या किसी लाभ के पद पर हो विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो कार्यपालिका के सदस्य यानी मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। इस संबंधन का यह कारण है कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य हो जाएं तो वे निजी स्वार्थ के लिए कानून का निर्माण करेंगे। पागलपन तथा दिवालिया। भारतीय संविधान यह प्रतिबंध लगाता है कि कोई व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया करार दे दिया गया हो वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता। सातवां, चुनाव का दुरुपयोग। निर्वाचन नियम के लिए न्यायपूर्ण आचरण और नियमों का पालन आवश्यक है। जो प्रत्याशी चुनाव में इन नियमों को भंग करता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। चुनाव दुराचरण का निर्धारण एक स्वतंत्र न्यायालय करता है। धर्म, कई देशों में धर्म की भी प्रतिनिधित्व की योग्यता निश्चित की गई है। इंग्लैंड में स्थापित गिरजाघरों के अधिकारी मंत्री और रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते। नेपाल में हिंदू ही सम्राट हो सकता है और पाकिस्तान में एक मुसलमान ही राष्ट्रपति हो सकता है। अनुभव, लॉस्की का कहना था कि केवल अनुभवी व्यक्तियों को ही व्यवस्थापिका के चुनाव में खड़ा होने की अनुमति मिलनी चाहिए। किसी भी प्रतिनिधि को स्थानीय संस्थाओं में काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रतिनिधियों के विशेषाधिकार। प्रत्येक देश में जहां प्रतिनिधियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त रहता है उन्हें संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने के तथा कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक पालन करने की शपथ लेनी पड़ती है। उन्हें विधानसभा तथा उसके बाहर विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। भाषण देने के लिए विरुद्ध ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सदन के अधिवेशन के समय उन्हें साधारणतः गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधियों का नियमित रूप से वार्षिक या मासिक वेतन तथा अन्य प्रकार के भत्ते मिलते हैं। प्रतिनिधियों के कर्तव्य। आधुनिक काल के प्रतिनिधि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह किसी दल, जाति, वर्ग या समूह का प्रतिनिधि नहीं करते। यद्यपि वह किसी जाति, समूह, क्षेत्र या वर्ग के समर्थन से चुना जाता है, फिर भी चुने जाने के बाद वह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि बन जाता है। वह संकुचित हित का नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधि है और राज्य कार्य ही उसका कर्तव्य है। वह अपने निर्वाचकों के आदेशों से बाध्य नहीं और न अपने कार्यों के लिए वह निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है। प्रतिनिधि अपने विवेक से कार्य करता है। वह अपने निर्वाचकों की मनोवृत्ति को ध्यान में रखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर बात के लिए उनकी सहमति लेता है, बल्कि वह अपने कार्य के विषय में पूर्ण स्वतंत्र है। वस्तुतः प्रतिनिधियों को अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस संबंध में बलुंसली ने कहा है कि प्रतिनिधि वह है जो अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा में लोगों के बदले अपनी स्वतंत्र निर्णय शक्ति के अनुसार कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है। उसके कार्य और निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि कोई प्रतिनिधि अपने विवेक और विचार शक्ति से कार्य ना करे केवल निर्वाचकों की सहमति से कार्य करे तो वह वास्तव में प्रतिनिधि नहीं है। लोकमत के लिए उसे विवेक से कार्य लेना चाहिए। निर्माण प्रणाली साधारणतः निर्वाचन के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जहां मतदाता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं निर्वाचन करते हैं। वे प्रतिनिधियों के चुनाव में स्वयं मत देते हैं। इसके विपरीत प्रत्यक्ष प्रणाली में मतदाता प्रतिनिधियों के चुनाव में स्वयं भाग नहीं लेते, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उसके बदले में प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। अर्थात प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदाता द्वारा निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। स्वयं मतदाता प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत में लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। इसके विपरीत राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोष। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लगभग सर्वमान्य प्रणाली है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल है। लोकसत्ता जनता में निहित है। प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत ही जनता को इस शक्ति को अभिव्यक्त करने का वास्तविक अवसर मिलता है। यह प्रणाली प्रतिनिधियों और निर्वाचकों में घनिष्ठ संबंध पैदा करती है। उम्मीदवार स्वयं निर्वाचकों के पास जाते हैं, उनसे मत देने की प्रार्थना करते हैं और मतदाताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। वे प्रतिनिधि चुने जाने के बाद उत्तरदायित्व का भी अनुभव करते हैं। जनता को भी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के कारण राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। उसमें राजनीतिक चेतना एवं सार्वजनिक कार्यों के संपादन की भावना उत्पन्न होती है। जनता अपने उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। साथ ही प्रतिनिधियों के निर्वाचनों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के कारण जनता को शासन संचालन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जनता राजनीतिक दलों तथा प्रतिनिधियों पर अंकुश भी रखती है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दायित्व को नहीं निभा पाते तो आगामी चुनाव में जनता उन्हें पूर्ण नहीं निर्वाचित करती। अतः प्रतिनिधियों के सार्वजनिक हित को बढ़ाने के लिए स्वयं जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एकदम दोष रहित है। इस प्रणाली में अनेक दोष पाए जाते हैं। आज निर्वाचकों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसके कारण निर्वाचन कार्य जटिल तथा कठिन हो जाता है। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था ही बहुत खर्चीली है, क्योंकि मतदाताओं को बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन्हें संपर्क स्थापित करना पड़ता है। साथ ही यह उत्तेजनापूर्ण होता है। इसमें बहुत से राजनीतिज्ञ धर्म, जाति, संप्रदाय आदि की दुहाई देकर मतदाताओं को बहकाते हैं। अतः बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति निर्वाचकों के झंझट से नहीं पड़ता। फलतः अयोग्य और अस्थाई व्यक्ति धन, वाक चातुर्य तथा संकीर्ण विचारों का सहारा लेकर चुनाव में प्राय विजयी हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोष। प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोषों को देखते हुए बहुत से विद्वान अप्रत्यक्ष प्रणाली का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत योग्य और वांछनीय व्यक्तियों का निर्वाचन संभव है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में अशिक्षित और अनुत्तरदायी जनता मतदान में भाग नहीं लेती। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष प्रणाली में कतिपय चुने हुए व्यक्ति भाग लेते हैं, जो साधारण जनता से अधिक बुद्धिमान तथा उत्तरदायी होते हैं। साथ ही उनकी संख्या भी कम होती है, इसलिए उन्हें क्षणिक आवेश में उभारा नहीं जा सकता। निर्वाचन में खर्च की मात्रा भी कम हो जाती है। राजनीतिक दलों की उग्रता भी इससे घटती है। पिछड़े देशों के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली भी काफी उपयुक्त सिद्ध हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली में गुण की अपेक्षा दोष अधिक है। यह पद्धति लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मतदाताओं तथा प्रतिनिधियों की अपेक्षा गुण इसमें कम तथा दोष ज्यादा आते हैं। यह पद्धति लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मतदाताओं तथा प्रतिनिधियों में कोई विशेष संबंध नहीं रह जाता। मतदाता देश की राजनीति एवं शासन में दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। ना तो वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और ना तो वे शासन पर नियंत्रण का ही काम कर सकते हैं। राजनीतिक दलबंदियां भी कम नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के आधार पर यह अनुभव प्राप्त किया गया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन केवल नामात्र का रह जाता है। अंत में निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कम रहने के कारण घुसखोरी एवं भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है।